ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को जारी रखने की अनुमति दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि पुनरीक्षण में आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार करने पर भी विचार करना चाहिए। संशोधित मतदाता सूची का मसौदा अगस्त में प्रकाशित किया जाएगा। न्यायालय ने आयोग को एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बिहार में अब तक 5,22,00,000 से अधिक मतदाता गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं, जो कुल प्रपत्रों का 66% से अधिक है। आयोग ने उम्मीद जताई है कि गणना प्रपत्र एकत्र करने का काम इस महीने की 25 तारीख की निर्धारित तिथि से पहले पूरा हो जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विपक्ष इस मामले में संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भ्रम फैला रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर तिरुवनंतपुरम जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राज्य के 7 जिलों के वार्ड समिति पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करेंगे। इस दौरान श्री शाह तिरुवनंतपुरम में पार्टी के नए राज्य मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री कन्नूर के थाली परम्बा राजराजेश्वरी मंदिर के दर्शन भी करेंगे। केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड को 1,066 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार असम के लिए 375 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 29 करोड़, मेघालय के लिए 30 करोड़, मिजोरम के लिए 22 करोड़, केरल के लिए 153 करोड़ और उत्तराखंड के लिए 455 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गुजरात में एक समारोह में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले एक दशक में देश के उच्च शिक्षा ढांचे में बड़ा परिवर्तन आया है।
जब अगर हम पिछले 10 साल की 11 साल की समीक्षा करते हैं 2014-15 की बेसलाइन डाटा से आज हम लोगों की 30% इंक्रीज हुई है उच्च शिक्षा की पार्टिसिपेशन। उसमें से महिलाओं की सबसे ज्यादा हुई है 38%। हमारी पीएचडी स्कॉलर्स की संख्या बढ़ी है। हमारी शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स की 14 की तुलना में अभी 10% ग्रोथ हुई है। एससीज की, शेड्यूल कास्ट की हमारी 8% ग्रोथ हुई है।
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को और अधिक गतिशील बनाने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 4,000% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अब 227 गीगावाट हो गई है। श्री गोयल ने कहा कि भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत अपने निर्धारित योगदान को पूरा करने वाला पहला G20 देश बन गया है। केरल में निपाह विषाणु के संक्रमण से निपटने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC के वैज्ञानिकों ने संयुक्त निदेशक प्रणय वर्मा के नेतृत्व में पालक्कड़ और मल्लमपुरम में दौरा किया। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के वैज्ञानिकों की एक टीम के भी पालक्कड़ और मल्लपुरम में निपाह से प्रभावित स्थानों का दौरा करने की उम्मीद है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा को बेहद सफल बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक स्वीकृति स्थापित की गई। विदेश मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। मंत्रालय ने इन टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक बताया। लॉर्ड्स में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक कल 4 विकेट पर 251 रन बना लिए थे। जो रूट 99 और कप्तान बेन स्टोक 39 रन से आगे आज खेलना शुरू करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।